دیکھیے بھائی سبق آگے چہارم مفعول لہورا چون قم تو اکرام لزیدن وضرب تو ہو تادیبن پنجم حال را چون جا ازیدن را کی بن ششم تمیز را وقتے کے در نسبت فعل بفاعل ابہام باشد طاب زید النفسن اما فعل متعدی مفعول به را بنصب کند چون ضرب زید عمرن و این عمل فعل لازم را نہ باشد. بھئی دوسرا باب ہم پڑھ رہے تھے افعال کے عمل کے بارے میں, اور انہوں نے آپ کو بتلایا کہ ہر فعل عمل کرتا ہے, ہر فعل عمل کرتا ہے, چاہے فعل معروف ہو چاہے فعل مجھول ہو, چاہے فعل لازم ہو اور چاہے فعل متعدی ہو. آپ نے پڑھا کہ فعل دو قسم پر ہے, یا وہ معروف ہوگا یا مجھول. فعل معروف جو ہے وہ فاعل کو رفع دیتا ہے, جبکہ فعل مجھول جو ہے وہ نائب الفاعل کو رفع دیتا ہے. نائب الفاعل وہی مفعول ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہے. تو فعل مجھول میں فاعل کو حذف کر لیتے ہیں اور اس کا نائب اور اس کا قائم مقام جو ہے وہ مفعول بہی کو بنا دیتے ہیں, اور پھر اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں کہ یہ فاعل کا نائب ہے. فاعل ختم کر دیا اور اس کو اس کا نائب بنا دیا اس کی جگہ پر, تو یہ اس کا قائم مقام ہے. اور فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے اور نائب الفاعل بھی مرفوع ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ہر فعل چاہتا ہے میں ایک اسم کو رفع دوں, اور جس اسم کو وہ رفع دے اگر وہ فعل معروف ہے تو وہ اسم اس کا فاعل کہلاتا ہے, اور اگر وہ فعل مجھول ہے تو وہ اس کا نائب الفاعل کہلاتا ہے. ضرب زیدن, ضرب فعل آیا اور اس کے بعد زیدن پر رفع پڑا, رفع پڑتے ہی آپ کو پتا چل گیا کہ یہ کیا ہے, فاعل ہے. توجہ ہے, زیدن پر میں نے جیسے ہی رفع پڑا آپ کو فوراً پتا چل گیا کہ یہ فاعل ہے, یعنی یہ اس فعل کو کرنے والا ہے, یعنی یہ فعل اس کے ساتھ قائم ہے, یوں کو فعل کا اسناد ہے اس کی طرف. توجہ ہے, فاعل کے لیے کئی لفظ میں نے بتلایا تھا, اگر کہہ دیا جائے یہ فعل اس کے ساتھ قائم ہے تو سمجھیں کس کی بات ہو رہی ہے, فاعل کی, اگر وہ فعل معروف ہے, اور اگر فعل مجھول ہے تو نائب الفاعل. اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا ہر فعل ایک ہی فاعل یا نائب فاعل کو رفع دے گا, ایک سے زیادہ کو رفع نہیں دے گا. تو جب فعل آ جائے تو ایک فاعل یا نائب فاعل مرفوع آ جائے گا, اور باقی جتنے لفظ ہوں گے یا وہ منصوب ہوں گے یا مجرور. پھر ان میں مجرور کو پہچاننا بھی بڑا آسان ہے, مجرور تو دو ہی ہیں, ایک مضاف الیہ اور دوسرا جس پر حرف جر داخل ہو, باقی سب منصوب ہوں گے. تو مرفوع صرف فاعل ہوگا یا نائب الفاعل ہوگا, اور فعل ایک ہی فاعل یا نائب فاعل کو رفع دیتا ہے, دو یا زیادہ کو نہیں. ہاں وہ فاعل یا نائب فاعل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے. اگر فعل ضمیر کو رفع دے دے وہ اس کا فاعل بن جائے تو پھر اس میں ظاہر جو ہے وہ فاعل یا نائب فاعل نہیں بن سکتا, اور اگر اس میں ظاہر فاعل یا نائب فاعل بن جائے تو پھر اس فعل کے اندر ضمیر نہیں ہوگی, وہ ضمیر کو رفع نہیں دے سکتا, کیونکہ فاعل یا نائب فاعل ایک ہی آ سکتا ہے, ایک سے زیادہ نہیں آ سکتے. اور یہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ فاعل یا نائب فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا, کبھی بھی فعل پر مقدم نہیں ہو سکتا. ضرب زیدن, یہ زیدن کیا ہے, ضرب کے لیے فاعل, لیکن اسی زیدن کو ضرب پر مقدم کر دو, زیدن ضرب, اب یہ زید جو ہے یہ فاعل نہیں بن سکتا. ترکیب میں کچھ اور تو بن سکتا ہے لیکن فاعل نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا, کیونکہ یہ فعل پر مقدم ہے. تو فاعل یا نائب فاعل کبھی بھی فعل پر مقدم نہیں ہو سکتا, اور فعل کا فاعل یا نائب فاعل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی. اس میں ظاہر میں نے بتایا تھا یہ اس میں ضمیر کے مقابلے میں ہے, तमाम दुनिया के आसमा या तो वो जमीर होंगे या इसमें जाहिर, और जमीरें तो 70 हैं आपने पढ़ा है, तो बाकी सारे इसम क्या हैं वो इसमें जाहिर हैं। किताब, कलम, जैद, अमर, बकर, जो भी लफ्ज आप लें अगर वो जमीर नहीं है, इसम है और जमीर नहीं, तो फिर वो क्या होगा, इसमें जाहिर होगा। फिर फेल के अंदर मैंने ये भी बतलाया था कि इसमें जाहिर जो है ये फेल माजी हो या मुजारे, सिर्फ पहले या चौथे सिगे के लिए इसमें जाहिर फाइल आ सकता है, और किसी सिगे के लिए इसमें जाहिर फाइल नहीं आ सकता भाई, इसमें जाहिर। और बाकी जो 12 सिगे हैं उनमें हमेशा फाइल की जमीर होगी या नाई फाइल की जमीर होगी, और फिर कभी वो बारिश होगी और कभी मुस्ततिर होगी। बारिश यानी जाहिर हो, तलफुज से उसका पता चल रहा हो, और मुस्ततिर जो उसके अंदर छुपी हुई हो। जी, यहां तक बातें समझ में आ गई। फिर उसके बाद आपने ये भी पढ़ा था कि फेल दो किस्म पर है, एक फेल लाजिम है और एक फेल मुतअद्दी। मैं बार बार तकरार करवा रहा हूं, खूब अच्छी तरह इन चीजों को जहन नशीन कर लें भाई। ये बुनियादी जाबते हैं, ये जाबते आपको आते होंगे, आप आराम से बेहतरीन तरकीब सीख लेंगे। तो आपको मैंने बताया फेल दो किस्म पर है, या फेल लाजिम होगा या फेल मुतअद्दी। फेल वलाजिम वो है जहां फाइल पर बात पूरी हो जाए, जहां फाइल पर बात पूरी हो जाए, मफूल की जरूरत ना हो। और फेल मुतअद्दी वो है जहां फाइल के साथ साथ मफूल की भी जरूरत हो, मफूल के बगैर वहां बात पूरी ना हो। और फेल मुतअद्दी की एक पहचान मैंने आपको बतलाई थी कि फेल मुतअद्दी का उर्दू में तर्जमा करें फेल माजी का, फेल मुतअद्दी हो और कौन सा सीगा लें उसका, माजी का, मुजारे नहीं, माजी का सीगा लें और उसका उर्दू में तर्जमा करें। अगर तर्जमे में लफ्ज ने आ जाए तो समझ जाएं कि ये फेल मुतअद्दी है, और अगर ने का लफ्ज ना आए तो समझ जाएं ये फेल लाजिम है। तुलबा अमूमन समझते हैं कि फेल मुतअद्दी के साथ मफूल जिक्र हो तो फिर यह फेल मुतअद्दी है, अगर मफूल को जिक्र न किया जाए, हजफ कर दिया जाए, तो फिर यह फेल लाजिम बन गया। ऐसा नहीं, जो फेल मुतअद्दी है वो मुतअद्दी ही रहेगा और जो फेल लाजिम है वो लाजिम ही रहेगा। तो फेल मुतअद्दी के लिए मफूल जिक्र करें या न करें वो फेल मुतअद्दी है। जराबा जैदुन आमरान, मैंने मफूल आमरान को जिक्र कर दिया तो भी ये जराबा फेल मुतअद्दी। मैं मफूल को हजफ कर दूं, जराबा जैदुन, जैद ने पिटाई की, तो भी फेल मुतअद्दी ही है, फेल मुतअद्दी ही है। तो मफूल को जिक्र करें या ना करें इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने आपको बताया था कि उस फेल के माना में गौर कर लिया करें कि इस फेल के लिए कोई मफूल चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे जर्ब के लिए हमेशा क्या चाहिए, मजरूब। शुरब के लिए हमेशा क्या चाहिए, मशरूब। अकल के लिए हमेशा क्या चाहिए, माकूल। तो इस तरह आप हर फेल में गौर किया करें कि इसके लिए कोई मफूल चाहिए या मफूल नहीं चाहिए। और फिर ये उर्दू की जो निशानी बतला दी इसकी भी आप मदद ले सकते हैं, इससे भी आपको आसानी से बात समझ में आ जाएगी। उसके बाद साहिब नहमीर ने आपको फेल मारूफ के बारे में बतलाना शुरू किया। फेल मजहूल की बात भी वो करेंगे थोड़ा आगे चलकर, लेकिन यहां उन्होंने फेल मारूफ के बारे में बतलाना शुरू किया कि फेल मारूफ जो है वो चाहे फेल लाजिम हो या फेल मुतअद्दी, वो हमेशा फाइल को रफा देंगे। वो हमेशा फेले मारूफ किसको रफा देगा, फाइल को, और फेले मजहूल किसको रफा देता है, नाई फाइल को। उसकी बात वो आगे चलकर करेंगे, फेले मजहूल की बात आगे करेंगे। यहां सिर्फ फेले मारूफ की बात कर रहे हैं कि फेले मारूफ चाहे लाजिम हो या मुतअद्दी, उसने हमेशा फाइल को रफा देना है। फेले मारूफ आ जाए और एक इसम पर रफा आ जाए, रफा देखते ही आप समझ जाए कि ये क्या है, फाइल है, क्योंकि फेल के बाद रफा किस पर आता है, फाइल पर आता है। और फिर ये भी बतलाया इन्होंने कि फेले लाजिम हो या मुतअद्दी, वो छह चीजों को नसब देंगे। छह चीजें, नंबर एक मफूल मुतलक, नंबर दो मफूल फी, और नंबर तीन मफूल माहू, और नंबर चार मफूल लहू, नंबर पांच हाल बई, और नंबर छह तमयीज। ये छह चीजें हैं, इनको फेले लाजिम भी नसब देता है और फेले मुतअद्दी भी नसब देता है। तो इन छह चीजों को ये दोनों फेल चाहे लाजिम हो या मुतादी वो नसब देंगे। हां फेल मुतादी वो मफूल बिही को भी नसब देता है, वो एक जायद चीज है। यहां सिर्फ वो चीजें जिक्र हो रही हैं जिनको फेले लाजिम भी नसब देता है और फेले मुतादी भी। इनमें से हम मफूल मुतलक, मफूल फी और मफूल लहू के बारे में हम पढ़ चुके। आपको मैंने बतलाया था कि मफूल मुतलक वो मसदर है जो माकबल फेल के माना में हो। तो दो चीजें इसमें आपने देखनी है मफूल मुतलक में, एक तो वो मसदर हो और दूसरा माकबल फेल के माना में हो। तो इस सूरत में फिर ये मफूल मुतलक होता है और इस पर नसब पड़ा जाता है, जैसे जराबा जैदन जरबन और काम जैदन कियामन, ये मफूल मुतलक हैं। देखो काम जैदन कियामन, ये कियाम ये मस्तर है और माकबल भी कुमतु का फेल यानी कियाम ही का फेल जिक्र हो रहा है, तो ये मस्तर है और माकबल फेल के माना में है। और इसी तरह जराब जैदन जरबन, यहां पर भी देखो ये जरब क्या है, ये माकबल फेल जराबा ही के माना में है और इनीज ये मस्तर भी है, तो ये मफूल मुतलक है और इस पर नसब पड़ा जाएगा। और मफूल मुतलक के मैंने बताया था तीन फायदे हैं, बड़े फायदे। कभी कभार इसको ताकीद के लिए जिक्र करते हैं, कभी इसको नौ बतलाने के लिए यानी फेल की किस्म बतलाने के लिए जिक्र करते हैं, और कभी कभार इसको फेल की तादाद बतलाने के लिए जिक्र करते हैं। ताकीद का क्या माना था कि ये फेल से मजाज के एहतमाल को खत्म कर देता है। जराबा जैदन जरबन, इस जरबन ने क्या बतलाया कि जराबा से जरब ही मुराद है, कोई डांटना वगैरह मुराद नहीं। और जलस्तु जिलसतल कारी, ये जिलसतल कारी ये मस्तर है, ये मस्तर है और माकबल फेल जलस्तु के माना में है और ये फेल की नौ और किस्म बयान कर रहा है कि किसके अंदाज में मैं बैठा, कारी के अंदाज में। और कभी कभार यह तादाद बतलाने के लिए आता है, जलस्तु जलसतन मैं एक मरतबा बैठा, जलस्तु जलसतैन मैं दो मरतबा बैठा, जलस्तु जलसातिन मैं कई मरतबा बैठा। उसके बाद हमने मफूल फी के बारे में पढ़ना शुरू किया। मैंने बतलाया कि मफूल फी जो है वो जमाने और मकान को कहते हैं, मकान यानी जगह जगह, जमाने और जगह जो जमाना और जगह जो है इसको मफूल फीह कहते हैं। मफूल फी देखो लफ्जों पे गौर करो फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, मफूलुन फीह, मफूलुन फेल किया गया है, फीह इसमें। देखो हर फेल के लिए कोई ना कोई जमाना चाहिए और कोई ना कोई जगह। आप खाने का फेल करें, आप सोने का फेल करें, आप चलने का फेल करें, आप सबक पढ़ने का फेल करें, आप जो भी फेल करेंगे कोई ना कोई जमाना होगा और कोई ना कोई जगह होगी जहां आपने ये फेल किया। तो ये जो जमाना और जगह है ये मफूल फी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मफूल फी। देखो तर्जमे पे गौर कर लें, मफूल उन फी ही, फेल इसके अंदर किया गया है। और याद रखो ये मफूल फी को जर्फ भी कहते हैं। जर्फ, जर्फ का माना है बर्तन, बर्तन। और मफूल फी को जर्फ इसलिए कहते हैं कि जैसे बर्तन में कोई चीज होती है तो बर्तन ने उस चीज को हर तरफ से घेरा होता है। जैसे गिलास के अंदर अगर पानी है तो इस पानी को गिलास ने हर तरफ से घेरा हुआ है, उस पानी के हर तरफ क्या मौजूद है, गिलास मौजूद है। इसी तरह किसी और बर्तन में, मसलन संदूक के अंदर आप कोई किताब रखते हैं, अब देखो ये संदूक उसके लिए एक बर्तन की मानिंद है, इस संदूक ने क्या कर दिया, किताब को हर तरफ से घेर लिया। या जैसे आप इस वक्त मस्जिद में बैठे हैं, देखो इस मस्जिद ने हर तरफ से आपका इहाता किया हुआ है, घेरा हुआ है, तो ये मस्जिद क्या है, आपके लिए जर्फ है। तो जैसे बर्तन के अंदर कोई चीज होती है और बर्तन ने उसका हर तरफ से इहाता किया होता है और वो चीज बर्तन के अंदर होती है, इसी तरह आप जो भी फेल करें तो किसी न किसी जमाने के अंदर आप होंगे, या वो दिन का वक्त होगा तो देखो दिन आपके लिए किसकी तरह है, जर्फ की तरह। या मसलन वो महीना है कोई, तो वो महीना आपके लिए किसकी तरह है, जर्फ की तरह। या वो कोई साल है तो साल किसकी तरह है, जर्फ। आप वो फेल कर रहे हैं और उस जमाने में हैं आप, उस जमाने के अंदर हैं, तो जमाना भी किसकी तरह हुआ, जर्फ की तरह, इसलिए उसको भी जर्फ कहते हैं। और जगह जो होती है वो भी जर्फ की तरह होती है। जैसे मैंने मिसाल जिक्र कर दी, आप मस्जिद में बैठे हैं इस वक्त, तो मस्जिद आपके लिए क्या है, जर्फ है, इसने हर तरफ से आपका इहाता किया हुआ है। या आप मदरसे में हो तो मदरसे ने हर तरफ से आपका इहाता किया हुआ है। या आप लाहौर शहर में हैं तो लाहौर ने आपका हर तरफ से इहाता किया हुआ है। या आप किसी मुल्क के अंदर हैं तो मुल्क ने हर तरफ से इहाता किया हुआ है। तो लिहाजा ये मफूल फी, ये जमाने को भी कहते हैं और जगह को भी, और इसका दूसरा नाम क्या है, जर्फ है। तो जर्फ गोया दो किस्म पर हुआ, एक जर्फ जमान और एक जर्फ मकान। तो जर्फ जमान ये भी मफूल फी, जर्फ मकान ये भी मफूल फी। जैसे इसकी मिसाल इन्होंने दी, जर्फ जमान की मिसाल दी, सुम तु, साम या सुम का माना रोजा रखना, सुम तु यौमल जुमाती, मैंने रोजा रखा जुमे के दिन, यानी जुमे के दिन में रखा, तो जुमे का दिन क्या हुआ, रोजा रखने के लिए जर्फ हुआ। तो ये जर्फ जमान की मिसाल है, क्योंकि जुमे का दिन ये जमाने का नाम है। और दूसरी मिसाल जर्फ मकान की दी, जलस्तु फौका का, मैं आपसे ऊंची जगह पर बैठा, यानी जहां आप बैठे थे मैं उससे कुछ ऊंची जगह पर बैठा। तो देखो जलस्तु फौका का, मैं आपसे ऊपर बैठा, ये ऊपर बैठ, ऊपर क्या है, जगह है, ऊपर हो या नीचे हो, दाएं हो बाएं हो सामने हो, ये सब क्या है, जगह है। तो लिहाजा ये मफूल फी बनेगा, और मफूल फी क्या होता है, मंसूब। इसीलिए सुम तो यौ मल जुमाती और इसी तरह जलस तो फौका का, दोनों जगह ये मफूल फी पर नसब आप पढ़ रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद आपने मफूल माहू के बारे में पढ़ा था, और इन्होंने आपको बतलाया था कि मफूल माहू ये वौ के बाद आता है और वो वौ मा के माना में होता है। मफूल माहू किसके बाद आता है, वाव के बाद, और वो वाव किस माना में होता है, मा के माने में, यानी इसका माना करते हैं साथ साथ। जा जैदुन व अमरन, जा जैदुन व अमर, एक सूरत यह है, मैं यूं पढ़ूं, जा जैदुन व अमरुन, अमरुन पर रफा पढ़ूं, इस ये रफा क्या बतला रहा है, ये मफूल माहू नहीं है, क्योंकि मफूल माहू पर तो क्या पढ़ते हैं, नसब, मालूम हो ये वाव आतिफा है। वाव क्या है, आतिफा। मैंने बतलाया था आतफ के लिए अरबी में वाव इस्तेमाल करते हैं, वाव है, फा है, और भी कई हरूफ हैं, 8-10 हरूफ हैं, वो आगे जिक्र आ जाएगा, लेकिन यहां सिर्फ मैं वाव की बात कर रहा हूं। अरबी में आतफ के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, वाव, और वाव से जो पहले आए उसको कहते हैं मातूफुन अलैही, और वाव के जो मा बाद आए उसको क्या कहते हैं, मातूफ कहते हैं। और मातूफ का वही एराब होता है जो मातूफुन आलय का, पहले कौन आता है वाव से, मातूफुन आलय, और बाद में कौन आता है, मातूफ, तो जो बाद में आ रहा है वो है मातूफ, और इस पर वही एराब आएगा जो किस पर था, मातूफुन आलय पर। मातूफुन आलय पर अगर रफा हो तो इस पर भी रफा आता है, अगर उस पर नसब हो तो इस पर भी नसब, अगर उस पर जर हो तो इस पर भी जर आता है। जा जैदुन व आमरुन, ये आमरुन का रफा क्या बतला रहा है, कि ये वो कौन सा है, आतफ वाला है। तो मातूफ पर वही अराब आता है जो मातूफुन अलह पर होता है। और दूसरी बात ये याद रखें कि मातूफ का वही हुक्म होता है जो मातूफुन अलह का होता है, यानी मातूफुन अलह अगर माकबल वाले फेल के लिए फाइल बन रहा है तो ये भी क्या बनेगा, उसके लिए फाइल बनेगा। तो अब आपके जहन में ये इश्काल ना आए कि ये तो दो फाइल बन गए फेल के लिए, नहीं भाई, हकीकत में फाइल सिर्फ वो पहला ही है, ये मातूफ कहलाता है, ये जो वाव के बाद आए वो मातूफ कहलाता है, उसको फाइल नहीं कहते, लेकिन हुक्म उसी जैसा है, यानी वो अगर इस फेल को करने वाला है यानी फाइल है तो ये भी उस फेल को करने वाला है यानी फाइल है, माना के एतबार से। लफ्जों में इसको फाइल नहीं कहेंगे, लफ्जों में इसको क्या कहेंगे, जा जैदुन व अमरुन, ये जैद तो क्या है, फाइल, ये जैद क्या है, और फाइल पर कौन सा इराब होता है, रफा, इसलिए मैंने रफा पढ़ा। जा जैदुन व अमरुन, ये जो अमरुन है इसको फाइल नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, मातूफ कहेंगे, मातूफ कहेंगे, और मातूफ पर वही इराब आता है जो किस पर आए, मातूफुन आले, उस पर रफा था जैद पर, तो आमर पर भी क्या पड़ा? रफा। और मातूफ का वही हुक्म है जो किसका था? मातूफुन आले का। यानी माना के एतबार से देखो जैद क्या बन रहा है, आपने देखा तो वो फाइल है, मालूम हुआ आमर भी क्या है? फाइल। यानी जैसे जैद ने आने का फेल किया है, जा जैदुन, जैद ने आने का फेल किया है, इसी तरह अमर ने भी आने का फेल किया है। तो मातूफ का एराब भी वही है जो मातूफुन अलैह का, और मातूफ का हुक्म भी वही है जो मातूफुन अलैह का है। भाई यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये वाव आतफ के लिए आता है, और ये वाव इतना बतलाता है कि मातूफ और मातूफुन अलैह इस फेल में शरीक हैं। इस वाव को वावे जमा कहते हैं, यानी ये दोनों को जमा कर देता है। जा जैदुन व अमरुन, इस वाव ने क्या बतलाया कि जैसे आने का फेल किसने किया? जैद ने। इसी तरह किसने किया? अमर ने। यानी इस वाव ने इन दोनों को इस फेल के अंदर जमा कर दिया कि ये फेल जैद ने भी किया है और ये फेल अमर ने भी किया है। बाकी ये कुछ तफसील बयान नहीं कर रहा कि कौन पहले आया था और कौन बाद में। लफ्जों में अगरचे जैद पहले है और अमर बाद में, लेकिन खारिज में और वाकई में हो सकता है कि अमर पहले आया हो और जैद बाद में, या हो सकता है जैद ही पहले हो और अमर बाद में, या हो सकता है दोनों इकट्ठे आए हों। तो चाहे दोनों इकट्ठे आए हों, चाहे अलहदा आए हों, चाहे जैद पहले हो, चाहे अमर पहले हो, हर सूरत में यानी तमाम सूरतों में आप कह सकते हैं जा अजैदुन वा अमरुन। तो जैद पहले है और लफ्जों में और अमर बाद में, लेकिन इसका यह माना नहीं कि आने में भी जैद पहले हो और अमर बाद में, क्योंकि यह वो ये तफसील बयान नहीं करता। वो सिर्फ इतना बताता है आने का फेल जैद ने भी किया और अमर ने भी किया। फिर चाहे दोनों इकट्ठे आए हों तब भी आप कह सकते हैं जा अजैदुन वा अमरुन, आए हालांकि दोनों इकट्ठे हैं लेकिन लफ्जों में जैद पहले है और अमर बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इकट्ठे आए हो तब भी आप कह सकते हैं, अगर दोनों अलहदा अलहदा आए हो तब भी आप कह सकते हैं जा जैदुन व अमरुन, जैद पहले हो और अमर बाद में तो भी आप कह सकते हैं जा जैदुन व अमरुन, अमर पहले आया हो और जैद उसके बाद, फिर भी आप कह सकते हैं जा जैदुन व अमरुन। हो सकता है जैद आज आया और अमर 20 साल पहले आया था, लेकिन फेल तो दोनों ने किया कि नहीं किया आने का? दोनों ने किया, लिहाजा आप कह सकते हैं जा जैदुन व अमरुन। हासिल कलाम ये कि ये वो सिर्फ इतना बताता है कि आने का फेल दोनों ने किया है, इससे ज्यादा तफसील वो बयान नहीं करता। कोई इकट्ठे आए या अलहदा आए, कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये वो कोई तफसील बयान नहीं करता। लेकिन अगर आप ये बतलाना चाहते हैं कि दोनों इकट्ठे आए हैं तो फिर वो बमाने मा को उसको इस्तेमाल कर लें और यूं कहें जा अजैदुन व अमरन, जा अजैदुन व अमरन। ये अमरन का नसब बतला रहा है, अमरन का नसब बतला रहा है कि ये वो आतिफा नहीं है। ये वो क्यों नहीं आतिफा? तो वो से माकबल वाले यानी जो मातूफुन अलैह होता है, वो से जो माकबल उस पर क्या है? रफा। और वो के बाद आप क्या पढ़ रहे हैं? नसब। मालूम हुआ ये वो आतिफा नहीं है, अगर वो आतिफा होता तो दोनों का इराब एक जैसा होता। मालूम हुआ ये वो कौन सा है? वो बमाने महा के है और इसके बाद वाले लफ्ज पर क्या पढ़ते हैं? नसब। और वो क्या कहलाता है? मफूल माहू। क्या कहलाता है? मफूल माहू। तो जा जैदुन व अमरन। अब इसका तर्जमा क्या करेंगे? वो का तर्जमा मा के कर दें यानी साथ। जा जैदुन व अमरन, आया जैद अमर के साथ, आया जैद अमर के साथ। देखो इसने फायदा दिया मुसाहबत का, या यूं कहो माइयत का, कि दोनों इकट्ठे आए हैं। जा जैदुन व अमरन, क्या इसे पता चला था कि दोनों इकट्ठे आए हैं? नहीं। और जा जैदुन व अमरन, इसने क्या बतलाया? कि दोनों इकट्ठे आए हैं। तो बस मौके के मुताबिक है, जहां आप माइयत बतलाना चाहते हैं तो फिर आप मफूल माहू के साथ मफूल माहू ले आए, या जा जैदुन व अमरुन, इसमें इकट्ठा होने का पता तो नहीं चल रहा, तो आप एक और लफ्ज बढ़ाकर ये बतला सकते हैं जा जैदुन व अमरुन मान, जा जैदुन व अमरुन मान, ये मान ने बतलाया कि दोनों इकट्ठे आए हैं, वाओ ने कुछ नहीं बतलाया कि इकट्ठे आए हैं या अलहदा, जबकि मफूल माहू में मान कहने की जरूरत ही नहीं, ये वाओ खुद ही मा के माना में है। जा जैदुन व अमरन, आया जैद अमर के साथ। तरीका समझ में आ गया अच्छी तरह? जैसे इसकी मिसाल इन्होंने किताब में दी थी, जा अल बर्दू वल जुब्बाती, जुब्बात मैंने बतलाया जमा है जुब्बतुन की, और जुब्बा ये अरब अपने लिबास के ऊपर कोई मोटा गरम कोट और शेरवानी जैसा कोई ऊपर पहनते थे गरम लिबास, तो उसको जुब्बा कहते थे, जुब्बा भाई, और उसकी जमा है जुब्बात। तो जा अल बर्दू वल जुब्बाती, जा अल बर्दू वल जुब्बाती, तर्जमा क्या करेंगे? आई सर्दी जुब्बों के साथ, यानी सर्दी आई तो गर्म कपड़े भी लोगों ने निकाल लिए और पहन लिए, तो सर्दी गर्म कपड़ों के साथ आ गई, सर्दी जुब्बों के साथ आ गई। जी तरकीब भी मैंने करवाई थी, जा फेल अलबर्दु, इस पर रफा पड़ा, इसे क्या पता चला? फाइल है, तो अलबर्दु मरफू लफजन फाइल, लफजन क्या माना इसके? हाँ फिर वही अधूरी बात, जिसके रफा पर हम क्या कर रहे हैं? तलफुज। तो अलबर्दु के रफा पर हम तलफुज कर रहे हैं। अलबर्दु देखो सुनने से ही पता चल गया कि मैंने क्या पढ़ा है, रफा। अलबर्दा अब क्या पढ़ा मैंने? नसब। अलबर्दी क्या पढ़ा? जर। तो देखा रफा नसब जर का तलफुज से ही पता चल रहा है, इसको कहते हैं एराबे लफ्जी। तो अलबर्दु मरफू लफ्जन और वो बमाने मा के, अल जुब्बाती ए अराब बोलो भाई जी, मनसूब लफजन, मनसूब कह रहे हो अल जुब्बाती, मैं तो जर पढ़ रहा हूं जी, हाँ शाबाश, ये जमा मोहन्नस सालिम है और इसमें तोलबा को बड़ा इश्तेबा लगता है, तो ये जमा मोहन्नस सालिम का नसब आता ही कसरा की सूरत में है, किस सूरत में है? कसरा की सूरत में है, तो ये मनसूब है, और कौन सा मनसूब है? लफजन है, तकदीरन है या महलन है? ये लफजन ही है, क्योंकि ये इस पर आप तलफुज कर रहे हैं तो कसरा की सूरत है बेशक, लेकिन है नसब ही और इस पर आप तलफुज कर रहे हैं। तो जा अल बर्दु वल जुब्बाती आई माल जुब्बाती, आगे देखिए भाई, चहारो मफूल लहूरा चुकुम तो इकराम लिजैदिन व जरब तो हू तादीबन, चौथी चीज जिसको फेल नसब देता है वो मफूल लहू है भाई, वो मफूल लहू है। मफूल लहू ये भी मस्दर होता है और मनसूब होता है, और ये माकबल फेल की इल्लत बयान करता है, इल्लत यानी उसका सबब, उसकी वजह बयान करता है। मसलन मैं कहता हूं जरब तो जैदन तादीबन, जरब तो जैदन तादीब, जरब तो मैंने पिटाई की जैदन जैद की, अब किस लिए पिटाई की कोई वजह पता नहीं, आगे तादीबन का लफ्ज लाकर मैं उसकी वजह जिक्र कर देता हूं। तादीबन अदब सिखाने के लिए, मैंने जैद की पिटाई की अदब सिखाने के लिए, तो तादीबन अदब सिखाने के लिए, ये तादीबन ये माकबल फेल जो जर्ब है उसकी इल्लत और वजह और सबब बयान कर रहा है कि ये जर्ब मैंने किस लिए लगाई, अदब सिखाने के लिए, तो इसको कहते हैं मफूल लहू जो माकबल फेल की इल्लत बयान करे। तवज्जो है, जरबतु जैदन तादीबन, मैंने जर्ब लगाई, किसको लगाई? जैद को, तादीबन किस लिए? अदब सिखाने के लिए। देखा इसका तर्जमा के लिए या की वजह के साथ करते हैं, जरब तो जैदन मैंने जैद की पिटाई की, तादीबन अदब सिखाने के लिए, अदब सिखाने के लिए, तो के लिए के साथ इसका तर्जमा करें, या यूं कर लें अदब की वजह से मैंने जैद की पिटाई की, अदब सिखाने की वजह से या अदब सिखाने के लिए, जो तर्जमा मौके के मुताबिक आपको बेहतर लगे। या दूसरी मिसाल ले लें, काद तो अनिल हरबी, कुऊद का माना होता है बैठना, काद तो अनिल हरबी मैं जंग से बैठ गया, माना यह मैं जंग में गया नहीं, शिरकत नहीं की, काद तो अनिल हरबी मैं जंग से बैठ गया यानी जंग में शिरकत नहीं की, जुबनन बुजदिली की वजह से, किसकी वजह से? बुजदिली की वजह से। अब ये जुबनन देखो मस्तर है और ये माकबल फेल की इल्लत और सबब बयान कर रहा है कि जंग में क्यों नहीं शिरकत की, जो बनान किसकी वजह से, बुजदिली की वजह से। याद रखो, तो कभी तर्जमा के लिए के साथ ज्यादा मुनासिब बनेगा और कभी तर्जमा की वजह से इसके साथ मुनासिब बनेगा। पहली मिसाल में जो तर्जमा था जरबतु जैदान तादीबन, वहां के लिए के साथ तर्जमा अच्छा बनता था। जरबतु जैदान तादीबन, मैंने जैद की पिटाई की अदब सिखाने के लिए, देखा के लिए लफ्ज लाए तो बेहतरीन तर्जमा हो गया। और कातु अनिल हरबी जुबनन, जुबन कहते हैं बुजदिली को, बुजदिली को, यहां पर तर्जमा की वजह के साथ बेहतरीन बनता है। कातु अनिल हरबी, मैं जंग से बैठ गया, जुबनन किस वजह से, बुजदिली की वजह से, बुजदिली की वजह से। तो इसको मफूल लहू कहते हैं, जो माकबल फेल के इल्लत बयान करे। फिर इसमें याद रखना, बाज जगह के लिए के साथ तर्जमा अच्छा बनेगा और बाज जगह की वजह से। ये दरअसल मफूल लहू दो किस्म पर है भाई, दो किस्म पर। कभी फेल मुकद्दम होता है और मफूल लहू मुआखर, और कभी मफूल लहू मुकद्दम होता है और फेल मुआखर। तवज्जो है, लफ्जों में तो उसी तरह होगा। जरबतु जैदन तादीबन, जरबतु पहले फेल आता है और आखिर में क्या आता है, तादीबन मफूल लहू आता है। कातु अनिल हरबी जुबनन, कातु अनिल हर्ब ये फेल मुकद्दम है और जुबनन मफूल लहू क्या है, मुअख्खर है। लेकिन वाक़े के अंदर कभी फेल मुकद्दम होता है और मफूल लहू मुअख्खर, और कभी मफूल लहू मुकद्दम होता है और फेल मुअख्खर। देखो मिसाल से और बात समझ में आ जाएगी। मसलन ज़रबतु ज़ैदन तादीबन, मैंने जैद की पिटाई की, किस लिए की, अदब सिखाने के लिए, अदब सिखाने के लिए। देखो यहां जर्ब पहले है या अदब सीखना पहले है, जर्ब पहले है और अदब का सीखना मुअख्खर है। यानी जो जो जर्ब लगती जा रही है वो अदब सीखता जा रहा है। तो जर्ब मुकद्दम और अदब का सीखना मुअख्खर है। बात समझ में आ गई। और कभी इसका बरअक्स होता है, कातु अनिल हर्ब जुबनन, मैं जंग से बैठा, किस लिए, किस वजह से, बुजदिली की वजह से। अब बताइए, जंग से बैठना, जंग में शिरकत न करना, यह पहले से है या बुजदिली पहले से है, बुजदिली पहले से है और इसी बुजदिली की वजह से जंग में शिरकत नहीं की। तो देखो यहां पर कातु अनिल हरबी जुबनन, बुजदिली जो मफूल लहू है वो पहले है और जंग से बैठना बाद में है। माना समझ में आ गया। तो जहां पर मफूल लहू क्या हो, जहां मफूल लहू मुअख्खर हो वहां तर्जमा के लिए बेहतरीन हो जाएगा, और जहां मफूल लहू मुकद्दम हो वहां पर की वजह से तर्जमा बेहतरीन हो जाएगा। ज़रबतु ज़ैदन तादीबन, कौन मुअख्खर है, तादीबन, तो तर्जमा किसके साथ करो, के लिए। ज़रबतु ज़ैदन तादीबन, मैंने ज़ैद की पिटाई की अदब सिखाने के लिए। और कातु अनिल हरबी जुबनन, मैं जंग से बैठा, यानी मैंने जंग में शिरकत नहीं की बुजदिली की वजह से। तो यहां पर ये जुबनन जो मफूल लहू है वो मुकद्दम है या मुअख्खर है, वो मुकद्दम है। जब मुकद्दम हो तो फिर तर्जमा की वजह से बेहतरीन होगा, मैं जंग से बैठा बुजदिली की वजह से। बात समझ में आ गई। देखिए अब किताब पर बैठ, कहते हैं चहारों मफूल लहूरा, चौथा जो है मफूल लहू को, भाई वो चीजें बयान हो रही हैं जिनको फेल नसब देता है। तो चौथी चीज जिसको फेल नसब देता है वो मफूल लहू है कि उसको नसब देता है। तो चहारों मफूल लहूरा, तो चौथा जिसको फेल नसब देता है वो मफूल लहू है। चूकुम तो इकराम लिज़ैदिन, कुम तो मैं खड़ा हुआ, इकराम लिज़ैदिन जैद का इकराम करने के लिए, मैं खड़ा हुआ जैद का इकराम करने के लिए। तो इकरामन देखो ये मसदर है और ये क्या कर रहा है, माकबल फेल की इल्लत और वजह जिक्र कर रहा है, तो इसको मफूल लहू कहते हैं जी। अब मुझे बताइए, कुम तो इकराम ले जैदिन, फेल कौन सा जिक्र, कुम तो यानी कियाम, यानी कियाम, और मफूल लहू क्या जिक्र, इकराम। मुझे बताइए कियाम मुकद्दम है या इकराम मुकद्दम है, कियाम खड़ा हुआ किस लिए, इकराम करने के लिए। मालूम हुआ मफूल लहू मुअख्खर है, मफूल लहू फेल मुकदम और मफूल लहू मुअख्खर, और जब मफूल लहू मुअख्खर हो तो फिर तर्जमा कैसे करते हैं के लिए। मैं खड़ा हुआ जैद का इकराम करने के लिए, तो मैं खड़ा हुआ इकराम अली जैदिन, जैद का इकराम करने के लिए। जी तरकीब करें भाई, कुम तो फेल बाफाइल, शाबाश, और फिर फाइल भी बताओ, ताजमीर मरफू महलन फाइल, इकरामन ये मफूल लहू है, मंसूब लफजन मफूल लहू, मफूल लहू मंसूब होता है, और लाम यूं करें तरकीब, इकरामन मंसूब लफजन मसदर, मंसूब लफजन मसदर, क्योंकि लिजैदिन जार मजरूर इसी से जुड़ेगा, लाम जारा जैदिन मजरूर कौन सा लफजन मजरूर, क्यों भाई, क्योंकि लाम जारा दाखिल है और हर्फ जर जर देता है, तो जार मजरूर मिलकर मुतालिक किस से, इकरामन से, इकरामन मसदर अपने मुतालिक से मिलकर ये मफूल लहू हुआ, किसके लिए, तुम तो फेल के लिए, फेल अपने फाइल और मफूल लहू से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। कुम तो इकराम लिजैदिन, मैं खड़ा हुआ जैद का इकराम करने के लिए, उसकी इज्जत करने के लिए। वज़रबतुहु तादीबन, मैंने पिटाई की उसकी, तादीबन अदब सिखाने के लिए। जी ये तादीबन क्या है, मफूल लहू है, और मफूल लहू क्या होता है, मंसूब, इसलिए इस पर नसब पड़ा। जी ज़रबतुहु तरकीब कीजिए, ज़रबतु फेल बाफाइल, इसके अंदर ताज़मीर एराब बोलो, मरफू महलन फाइल, मरफू क्यों, फाइल है, महलन क्यों, मबनी है, क्योंकि जमीर है। आगे भाई जी, हां हो नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है, हा जमीर, भाई हा क्यों पढ़ा, क्योंकि हा ये कलीमा है, ये क्या है, बामाना लफ्ज, भाई कलीमा किसे कहते हैं, और ये हा भी जमीर है, और जमीर का कोई ना कोई माना होता है, तो ये कलीमा है, और कितने हरूफ पर मुश्तमिल, एक, और जो भी कलीमा एक हर्फ पर मुश्तमिल हो और उसका नाम लेना हो तो क्या नाम लेंगे, हरूफ तहजी में इस हर्फ को क्या कहते हैं, हा कहते हैं, तो हा जमीर, हा जमीर, हु ना कहना भाई, उलमूमन तुलबा हु कह देते हैं, हा जमीर बोलो, एराब बोलो, जे हां फाइल मरफू आता है और वो गुजर गया, उसके बाद फेल में मंसूबात आते हैं या मजरूरात, फाइल एक ज़रबतु की ताज़मीर क्या थी, मरफू थी, अब आगे मंसूब आएंगे या मजरूर, मरफू नहीं आ सकता, तो ये हाज़मीर क्या है, मंसूब, मंसूब क्यों, मजरूर क्यों नहीं कहते, क्योंकि इस पर हर्फ जर भी दाखिल नहीं और ये मुजाफिले भी नहीं, तो लिहाजा ये मंसूब है, और मंसूब कौन सा, महलन क्यों कहा, मबनी है, क्योंकि जमीर है, जमीर किस में से है, मबनियात, मबनियात याद है भाई कौन कौन से, नंबर एक तमाम जमीरें, नंबर दो अस्माए इशारा, नंबर तीन अस्माए मौसूला, नंबर चार अस्माए अफाल, नंबर पांच अस्माए अस्वात, नंबर छह अस्माए ज़ुरूफ, नंबर सात अस्माए किनाया, और नंबर आठ कुछ मुरक्कब बिनाई, यानी कुछ मुरक्कबात हैं, बात समझ में आ गई, तो ये इस तरह जहां जिक्र आए वो चीज दोहरा लिया करें, पूरी जहन में ताजा हो जाएगी। तो ज़रबतुहु ताज़मीर क्या है, मरफू महलान फाइल, मरफू क्यों, फाइल, फाइल हमेशा मरफू होता है, और हाज़मीर मंसूब, क्योंकि फेल के आने के बाद सिर्फ फाइल मरफू आ सकता है और कोई चीज मरफू नहीं, फाइल गुजर गया अब आगे, तो हाज़मीर मंसूब महल। अगर कोई इश्काल करे, ज़रबतुहु, ज़रबतु ये ताज़मीर, ये क्या है, फाइल, और इसका इराब क्या बताया, मरफू महलन, भाई महलन कैसे, ज़रबतु मैं ता पर बाकायदा रफा पढ़ रहा हूं, तो मरफू लफ्जन क्यों नहीं कहते, जे ज़रबतु मैं पेश पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा, फिर मरफू लफ्जन क्यों नहीं कहते, हाँ आप जवाब में कहें ये जमीर है, ये याद रखें ये क्या है, और जमीर पर कभी अराब लफ्जन आता है नहीं आता, लेकिन आप तो पेश पढ़ रहे हैं तो कहें ये इसकी हरकत है, ये क्या है इसकी वैसे हरकत है एराब नहीं। इसी तरह ज़रबतुहू में जो हा जमीर है उस पर भी हम पेश पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको आपने क्या कहा इसका एराब क्या है मनसूब महल, भाई इस पर भी तो हम पेश पढ़ रहे हैं, कोई कहेगा ये मरफू है, आप जवाब में क्या कहें कि मैं तो इस पर रफा पढ़ रहा हूं ये मरफू है, आप जवाब में क्या कहेंगे कि जो रफा आप पढ़ रहे हैं ये ये वैसे हरकत है, ये हरकत है एराब नहीं, क्योंकि एराब तो जमीर पर जाहिर ही नहीं हो सकता, तो ये मनसूब महलन मफूल भी ही। और तादीबन हां मफूल लहू है, मनसूब लफ्जान मफूल लहू, और फेल अपने फाइल मफूल भी ही और मफूल लहू से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। यह ना कहना फेल अपने फाइल और दोनों मफूलों से, दोनों मफूल से तो लगता है दोनों मफूल भी ही हैं, हालांकि दोनों मफूल भी ही हैं, यह एक मफूल भी ही है, एक मफूल भी ही एक मफूल लहू है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, लिहाजा दोनों मफूल ना बोलना, हर एक का अलग अलग नाम लेना, फेल अपने फाइल और मफूल लहू और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। तरकीब समझ में आ गई। अब देखें ये जो मफूल लहू होता है ये भी मस्तर होता है, मफूल मुतलक जो गुजरा था वो भी क्या था मस्तर था, लेकिन फर्क दोनों में समझ में आ रहा है, मफूल मुतलक मस्तर होता है लेकिन माकबल फेल के माना में होता है, मफूल लहू भी मस्तर होता है लेकिन ये माकबल फेल के माना में नहीं। देखो कुम तो इकरामन लिज़ैदीन, इकरामन ये क्या है मस्तर, लेकिन माकबल में फेल कौन सा है कुम तो, माकबल में फेल में कयाम जिक्र है और यहां पर मस्तर में इकराम जिक्र है, दोनों अलग चीजें हैं। इसी तरह ज़रबतुहु तादीबन, ये तादीबन भी क्या है मस्तर है लेकिन माकबल में फेल क्या जिक्र ज़रबतु, तो देखो दोनों अलग अलग हैं, ज़रबतु का माना और वहां ज़रब जिक्र हो रही है और तादीबन का माना और, इसमें क्या जिक्र हो रहा है इसमें अदब, इसमें अदब सिखाने का जिक्र है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो फर्क समझ में आ गया। मफूल मुतलक वो भी मस्तर होता है लेकिन माकबल फेल के माना में होता है, और मफूल लहू वो भी मस्तर होता है लेकिन उसका माना और होगा और वो माकबल फेल की इल्लत बयान करेगा। आगे देखिए भाई, पंजुम हाल रा, पांचवा जिसको पांचवा हाल को, रा का क्या माना होता है को, यह सब जगह रा आ रहा है, मफूल मुतलक रा, मफूल फी रा, मफूल माहू रा, यानी वो चीजें जिनको फेल नसब देता है, अव्वल मफूल मुतलक रा यानी मफूल मुतलक को यानी इसको नसब देता है, दो मफूल फी रा दूसरा मफूल फी को जी, तो पांचवा है जी हाल रा, हाल को नसब देता है। चूं जा अज़ैदुन राकिबन, आया मेरे पास जैद राकिबन, इस हाल में कि वो सवार था यानी सवारी की हालत में मेरे पास जैद आया, जा अज़ैदुन राकिबन, आया मेरे पास जैद सवार होकर, तो ये जो राकिबन है ये हाल है, ये हालत बयान करता है किसी चीज की हालत, और हालत ये फिर फाइल की कभी बयान करता है, कभी मफूल की बयान करता है, और कभी दोनों की हालत बयान करता है। तवज्जो है, हाल क्या करता है फाइल या मफूल या दोनों की हालत बयान करता है, लफ्ज से ही पता चल रहा है हाल मालूम हो क्या बयान कर रहा है हाल को यानी हालत को बयान कर रहा है। जा अनी जैदुन, आया मेरे पास जैद, अब पता नहीं किस हालत में आया, सवार होकर आया है या पैदल आया है, तो राकिबन हाल ने आकर बतला दिया कि वो किस हाल में आया सवार होकर आया है पैदल नहीं आया, तो ये कभी फाइल की हालत बयान करता है, कभी किसकी हालत बयान करेगा मफूल की, और कभी फाइल और मफूल दोनों की हालत को बयान करेगा, मफूल की हालत बयान करेगा, जैसे ज़रबतु ज़ैदन मशदूदन, ये कोई एक सफे के बाद मिसाल आ रही है, ज़रबतु ज़ैदन मशदूदन, ज़रबतु मैंने पिटाई की, ज़ैदन ज़ैद की, मशदूदन इस हाल में कि वो बांधा हुआ था, कि उसको बांधा गया था। मैंने जैद की पिटाई की इस हाल में कि उसको बांधा गया था। तो देखो ये किसकी हालत बयान हो रही है, जैद जो मफूल है, जरब तो मैंने पिटाई की और किसकी पिटाई की, जैद की, और मशदूदन इस हाल में कि वो बांधा हुआ था। देखो लफ्ज से ही पता चल गया ये फाइल की हालत नहीं बयान हो रही। आपको बांध दिया जाए तो किसी की पिटाई कर सकते हैं नहीं, हां मफूल को बांधा हुआ है फिर उसकी पिटाई हो सकती है। तो लिहाजा मशदूदन ऐसा हाल लेकर आए जो फाइल से बन ही नहीं सकता। बात समझ में आ गई भाई। तो लिहाजा ये किसकी हालत बयान हुई, मफूल की। और कभी कभार ये दोनों की हालत बयान करता है, जैसे लकीतु जैदन राकिबैनी, लकीतु जैदन
राकिबैनी,
मैंने मुलाकात की, लकीतु मैंने मुलाकात की जैदन जैद से, राकिबैनी इस हाल में कि हम दोनों सवार थे, यानी वो भी सवारी पर था और मैं भी सवारी पर था। मैंने और जैद ने सवार होकर मुलाकात की। तर्जमा समझ में आ रहा है, लकीतु जैदन राकिबैनी, मैंने मुलाकात की जैद से इस हाल में कि हम दोनों सवार थे। भाई देखो फिर सुनो, हाल क्या करता है, हालत बयान करता है किसकी, फाइल की या मफूल की या दोनों की। मौका महल के मुताबिक आपने देखना है कि फाइल की हालत बयान हो रही है या मफूल की या दोनों की। मसलन पहली मिसाल क्या आई, जा अजैदोन राकिबन, तो यहां तो मफूल है ही नहीं, मालूम हो यह राकिबन किसकी हालत बयान कर रहा है, फाइल की हालत बयान कर रहा है। तर्जमा क्या किया, जा जैदुन, आया जैद राकिबन इस हाल में कि वो सवार था। अब ये जो राकिबन हाल है क्या है, तर्जमे पे नजर है, जा जैदुन राकिबन, तर्जमा करो, आया जैद इस हाल में कि वो सवार था। भाई उर्दू में इस तरह इस्तेमाल नहीं होता, उर्दू में कहीं आप ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि आया जैद इस हाल में कि वो सवार था। अरबी में इस तरह आता है। तो उर्दू में बामुहावरा तर्जमा करने के लिए हाल को उठाकर जुमले के अंदर ले जाया करें, आया जैद इसी के अंदर ले आए जुमले, किसको, इस हाल में कि वो सवार था, इसको उठाकर कहां ले आए, जुमले के अंदर, और यूं तर्जमा करें, जैद सवार होकर आया, जैद, देखा अब बेहतरीन तर्जमा हो गया या नहीं, जैद सवार होकर आया, तो सवार होने को जुमले के अंदर ही जिक्र कर दिया। या ज़रबतु ज़ैदन मशदूदन, मैंने जैद को मारा, मैंने जैद की पिटाई की इस हाल में कि वो बांधा हुआ था, उसको बांधा गया था, तो इस हाल को भी जुमले के अंदर ले आए। कैसे करेंगे तर्जमा, मैंने बांधे हुए जैद की पिटाई की, मैंने मौके के मुताबिक आप खुद बना लें। बात समझ में आ गई, कोई जाब्ता नहीं कि इसी तरीके से आपने करना है। हां एक तरीका यह था, होकर जैसे आया था, जैद सवार होकर आया मौके के मुताबिक, या दूसरा अब यहां पर है, जरबतु जैदन मशदूदन, मैंने जैद की पिटाई की इस हाल में कि वो बांधा हुआ था, अब इसको जरा बांधे हुए को जुमले के अंदर ले आए, मैंने बांधे हुए जैद की पिटाई की। और कभी कभार दोनों की हालत बयान करेगा, लकीतु जैदन राकिबैनी, मैंने जैद से मुलाकात की इस हाल में कि हम दोनों सवार थे, जी इसको भी जुमले के अंदर ले आए, जो भी मुनासिब लगे। आपने सिर्फ यह बयान करना है कि आपकी मुलाकात हुई है और जैद की हुई है और दोनों किस हालत में थे, सवारी की हालत में थे, जी कोई तर्जमा कर लें मुनासिब सा। फिर हालत का लफ्ज ला रहे हो, मैंने और जैद ने सवार होकर मुलाकात की, मैंने और जैद ने सवार होकर, कोई भी मुनासिब तर्जमा कर लें। तो कहते हैं पंजुम हाल रा, पांचवां जो है हाल को नसब देते हैं, चूं जा अजैदुन रा की बन, जैद सवार होकर आया, शशुम तमीज रा, छठी चीज जो है वो तमीज है जिसको फेल नसब देता है। ششم तमीज रा छठा तमीज को यानी इसको नसब देते हैं। वक्ते के दर निस्बत फेल बफाइल इबहाम बाशत, वक्ते के जिस वक्त के दर निस्बत फेल बफाइल, वो जो फेल की निस्बत हो फाइल की तरफ उस निस्बत में इबहाम बाशद, कोई इबहाम हो। तमीज याद रखो भाई इबहाम को दूर करने के लिए आती है, किसी चीज में इबहाम हो तमीज आकर इबहाम को दूर कर देगी। मसलन मैं कहना चाहता हूं कि मसलन मैंने कहा इशरूना, इशरूना का क्या माना 20, इशरूना का क्या माना 20, मैंने कहा इशरूना 20, आपको कुछ पता चला क्या 20 चीजें मैं जिक्र कर रहा हूं? नहीं, आदद का तो पता चला, लेकिन किताबें 20 हैं या कलम 20 हैं या रुपए 20 हैं, क्या चीज 20 है उसका आपको पता नहीं चला। तो इशरूना के अंदर इबहाम है, क्या है इबहाम, इबहाम यानी कुछ पोशीदगी है, कुछ खिफा है, बात का पूरा पता नहीं चल रहा। इतना तो पता चल गया कि 20 चीजें हैं, लेकिन क्या चीज है, कलम है, किताब है, रुपए हैं या कोई और चीज है, या पत्थर हैं, कोई चीज है, लेकिन पता नहीं चल रहा, तो क्या कहेंगे इशरूना में इबहाम है। इबहाम का क्या माना, कुछ पोशीदगी है, कुछ खिफा है, बात पूरी वाजह नहीं। तो जब ऐसा कोई लफ्ज आ जाए जिसके अंदर खिफा हो इबहाम हो, तो तमीज लाकर उस इबहाम को दूर किया जाता है, तमीज आकर उस इबहाम को दूर कर देती है। मसलन अब मैं आपको बताना चाहता हूं 20 किताबें, तो इशरूना के बाद मैं किताब का लफ्ज ले आऊंगा तमीज बनाकर और यूं कहूंगा इशरूना किताबन, इशरूना किताबन, कितनी किताबें 20 किताबें। अब इबहाम दूर हो गया, पोशीदगी और खिफा खत्म हुआ, पता चल गया कि कलम नहीं मुराद, पत्थर नहीं मुराद, बल्कि क्या मुराद है, किताबें मुराद हैं। तो ये तमीज क्या करती है, इबहाम को आकर दूर कर देती है। या मसलन मैं आपसे कहता हूं 1 किलो, अब 1 किलो क्या चीज है भाई, 1 किलो वजन वाली कोई भी चीज हो सकती है। फिर आगे मैं कोई लफ्ज लाकर क्या करता हूं, उस इबहाम को दूर करता हूं। तो ये तमीज जो है ये इबहाम को दूर करती है, कभी ये मिकदारों से इबहाम को दूर करती है, और कभी कभार ये निस्बत से इबहाम को दूर करती है। कभी कभार ये किससे दूर करती है इबहाम को, मिकदारों से, मिकदारों से। जैसे आगे वो मिसालें देंगे, एक शख्स कहता है इंदी रितलुन, मेरे पास 1 रितल है, रितल पैमाना है, पैमाना है, खास मिकदार का नाम है। अब वो 1 रितल, 1 रितल यूं कहो मसलन आधा किलो या आधा शेर कह लो, तो आधा शेर क्या चीज है पता नहीं चल रहा, हो सकता है घी हो सकता है पानी हो, या हो सकता है शहद हो, कोई भी चीज हो सकती है। तो वो फिर आगे लाता है कि रितलुन जैतन, 1 रितल क्या है, जैतन, जैतून का तेल है या तेल है, 1 रितल क्या है, तेल, जैत कहते हैं जैतून के तेल को। तो इसने इबहाम को दूर कर दिया जैतन ने आकर, इंदी रेतलोन जैतन। बात चल रही है तमीज की, और फेल क्या करता है, तमीज को नसब देता है, तमीज हमेशा मंसूब होगी। जैसे इशरूना किताबन, देखा किताबन क्या है, मंसूब है, क्योंकि ये क्या बन रहा है, तमीज है, और तमीज मंसूब होती है। तो तमीज जो है इबहाम को दूर करती है, कभी कभार ये किससे इबहाम को दूर करती है, मिकदार से, और कभी किससे इबहाम को दूर करती है, निस्बत से। निस्बत की भी मिसाल अभी मैं बयान करता हूं, पहले ये समझ लें कि तमीज क्या करती है, कभी मिकदार से इबहाम को दूर करती है। जैसे और मिसाल ले लें, अभी क्या मिसाल जिक्र की, इंदी रितलुन जैतान, मेरे पास 1 रितल है, क्या चीज है 1 रितल, शहद है या आम तेल है या रोगन जैतून, जैतून का तेल है, तो आगे जैतन, ये तमीज आ गई, और तमीज क्या होती है, मंसूब, देखो ये मंसूब है। मालूम हुआ कि 1 रितल क्या चीज है आपके पास, जैतून का तेल है भाई। तो इस तरह देखो ये तमीज क्या करती है, मिकदार से इबहाम को दूर करती है। और कभी कभार इबहाम निस्बत में होता है, फेल की जो निस्बत होती है किसकी तरफ, फाइल की तरफ, उस निस्बत में इबहाम होता है, तमीज आकर उस इबहाम को दूर कर देती है। मसलन आप कहते हैं ताब जैदुन, जैद अच्छा है, जैद अच्छा है, अब इबहाम है किस एतबार से जैद अच्छा है, या यूं कहें जैद खुश हुआ, जो भी तर्जमा कर लें, ताब जैदुन जैद अच्छा है और ताब जैदुन जैद खुश हुआ, ताब जैदुन जैद अच्छा है, अब किस एतबार से अच्छा है, इबहाम है। देखो ताबा की निस्बत हो रही है, ताब जैदुन, ताबा फेल, जैदुन फाइल, तो फेल की निस्बत है किसकी तरफ, फाइल यानी फाइल की तरफ, इस निस्बत में इबहाम है कि जैद अच्छा है भाई किस एतबार से अच्छा है, अपनी जात के एतबार से अच्छा है, बाप के एतबार से अच्छा है, या इलम के एतबार से अच्छा है, तो आगे नफसन तमीज आ गई, जैद अच्छा है अपनी जात के एतबार से, यानी जात जैद की जात अच्छी है, तवज्जो है
जी।
देखो ताबा जैदुन नफसन, ये ताबा की निस्बत है किसकी तरफ,
जैद
की तरफ, फेल की निस्बत होती है फाइल या नाइब फाइल की तरफ, ताबा फेल मारूफ है तो जैदुन क्या बना उसके लिए फाइल, तो ये जो ताबा की निस्बत हो रही है, ये जो ताबा का इसनाद हो रहा है किसकी तरफ, जैद की तरफ, इस निस्बत में इबहाम होता है कभी कभार कि जैद अच्छा है भाई किस एतबार से अच्छा है, अपनी जात के एतबार से अच्छा है, या अपने इलम के एतबार से अच्छा है, या बाप होने के एतबार से वो अच्छा है, तो इलम के एतबार से भी वो अच्छा हो सकता है कि उसके पास उसका इलम बड़ा अच्छा है, ज्यादा इलम है उसके पास, या जात के एतबार से वो अच्छा है, जात के एतबार से भी अच्छा हो सकता है, बड़ा अच्छा आदमी है, या ताब जैदुन अबन, जैद अच्छा है किस एतबार से, बाप के एतबार से, यानी बाप होने की हैसियत से वो बड़ा अच्छा आदमी है, या उसका बाप बड़ा अच्छा आदमी है, तवज्जो है, तो जैद अच्छा है किस एतबार से अच्छा है, अपनी जात के एतबार से अच्छा है, अपने इलम के एतबार से अच्छा है, या बाप होने के एतबार से अच्छा है, उसमें इबहाम था, आगे नफसन ने आकर उस इबहाम को दूर कर दिया और बतला दिया कि जैद अपनी जात के एतबार से अच्छा आदमी है, ताब जैदुन नफसन, जैद अच्छा है अपनी जात के एतबार से, जात के बजाय अगर आप यह बताना चाहते हो बाप होने के एतबार से अच्छा है तो अबन ले आए, ताब जैदुन अबन, जैद अच्छा है बाप होने के एतबार से, यानी वो अच्छा बाप है, अपने बच्चों का अच्छा बाप है, उनका बहुत ख्याल रखता है, या यूं तर्जमा कर लें ताब जैदुन अबन, जैद अच्छा है बाप होने के एतबार से, यानी जैद का बाप अच्छा है, जैद का बाप उसके लिए बहुत अच्छा है, उसका बहुत ख्याल रखता है, या ताब जैदुन इल्मन, जैद अच्छा है किस एतबार से, इलम के एतबार से, यानी उसके बाद बड़ा अच्छा इलम है, बेहतरीन इलम है, बात समझ में आ रही है, तो ताब जैदुन ये ताबा की निस्बत है किसकी तरफ, जैद यानी फाइल की तरफ, तो कभी कभार ये जो फेल की निस्बत होती है फाइल की तरफ, इसके अंदर इबहाम होता है, आगे तमीज आकर उस इबहाम को दूर कर देती है और तमीज मनसूब होगी, तो ये जो तमीज है मनसूब आई, इसको नसब फेल ने दिया, किसने दिया, ताबा जैदुन नफसन, जैदुन को रफा किसने दिया, फेल ताबा ने, और ये नफसन को नसब किसने दिया, ताबा ने, तो मालूम हुआ यही ताबा रफा भी दे रहा है और नसब, क्योंकि इन्होंने क्या बतलाया था कि फेल लाजिम हो या मुतादी, वो छह चीजों को नसब देता है, पहली चीज मफूल मुतलक, नंबर दो मफूल फीह, नंबर तीन मफूल माहू, नंबर चार मफूल लहू, नंबर पांच हाल, और नंबर छह तमीज, तो ये तमीज हम पढ़ रहे हैं, इसको फेल नसब देता है, तो कहते हैं शशुम तमीज राछटा तमीज को, यानी इसको फेल नसब देता है, वक्ते के दर निस्बत फेल बफाइल इबहामे बाशद, वक्ते के उस वक्त के दर निस्बत फेल बफाइल, जिस वक्त फेल की जो निस्बत है बफाइल किसकी तरफ, वो जो फेल की निस्बत है फाइल की तरफ, जब उस निस्बत में इबहामे बाशद कोई इबहाम हो, ताब जैदुन नफसन, जैद अच्छा है किस एतबार से, जात के एतबार से, जात के एतबार से, और अगर बाप होने के एतबार से अच्छा है तो क्या कहेंगे, ताब जैदुन अबन, अबन, اب باپ کو کہتے ہیں طاب زیدن ابن، یہ بھی منصوب کیونکہ تمیز ہے، اور اگر علم کے اعتبار سے اچھا ہے تو طاب زیدن علما، دیکھو یہ منصوب ہے تمیز ہے بھائی. تو طاب فعل، زیدن مرفوع لفظان فاعل، اور نفظان منصوب لفظان تمیز ہے نسبت سے، جو طاب کی نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف، اس نسبت سے یہ تمیز ہے. فعل اپنے فاعل اور تمیز سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، زید اچھا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے. اما فعل متعدی مفعول بہی را بنصب کنت، باقی فعل متعدی جو ہے وہ مفعول بہی کو نصب دیتا ہے. بھئی انہوں نے بتلایا فعل لازم ہو یا فعل متعدی، وہ چھ چیزوں کو نصب دیں گے. چھ چیزوں کو کون کون سے؟ نمبر ایک مفعول مطلق، نمبر دو مفعول فی، نمبر تین مفعول معہ، نمبر چار مفعول لہ، نمبر پانچ حال، اور نمبر چھ تمیز. یہ چھ چیزیں ہیں، ان کو فعل لازم بھی نصب دے گا اور فعل متعدی بھی، لیکن ایک مفعول باقی ہے مفعول بھی، اس کو صرف فعل متعدی نصب دیتا ہے فعل لازم نصب، تو وہ ساتویں چیز ہے جس کو فعل متعدی نصب دیتا ہے لیکن فعل لازم نصب نہیں دیتا. یہ جو پہلے چھ ذکر ہوئے، یہ ان کو فعل لازم بھی نصب دیتا ہے اور فعل متعدی بھی، اس لیے ان کو پہلے ذکر کیا، اور جس کو صرف فعل متعدی دیتا ہے نصب اس کو آخر میں اب ذکر کر رہے ہیں. تو فعل متعدی گویا کتنی چیزوں کا نصب دیتا ہے؟ سات چیزوں کو بھائی. تو کہتے ہیں اما فعل متعدی مفعول بھی رابع نصب کنت، فعل متعدی جو ہے وہ مفعول بھی کو نصب دیتا ہے. چون زارب زید عمران، زید نے عمر کی پٹائی کی، وہ این عمل فعل لازم رانا باشد، اور یہ عمل فعل لازم کا نہیں ہوتا، یعنی فعل لازم مفعول کو نصب نہیں دیتا، یہ صرف فعل متعدی اس طرح نصب دیتا ہے. اور پھر یاد رکھنا فعل متعدی کبھی ایک مفعول کو نصب دیتا ہے، کبھی دو مفعولوں کو نصب دیتا ہے، اور کبھی تین مفعول بھی ہوتے ہیں جن کو وہ کبھی فعل متعدی کبھی ایک مفعول بھی کو نصب دیتا ہے، کبھی دو مفعول بھی ان کو نصب دیتا ہے، اور کبھی تین مفعول بھی ہیں جن کو وہ نصب دیتا ہے. لیکن عام افعال وہ اکثر ایک ہی مفعول بھی کو نصب دیتے ہیں فعل متعدی جو ہیں، اور دو والے بہت تھوڑے افعال ہیں، اور تین والے تو بہت ہی تھوڑے سے ہیں، چند لفظ ہی ہیں جو دو چند فعل ہی ہیں جو تین مفعولوں کو نصب دیتے ہیں. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی حاصل کلام پھر سن لیں. بھائی آج آپ نے پڑھا مفعول لہو کے بارے میں، حال اور تمیز کے بارے میں. مفعول لہو کسے کہتے ہیں؟ وہ مصدر جو ماقبل فعل کی علت بیان کرے اس کو مفعول لہو کہتے ہیں. اور مفعول مطلق سے اس کا کیا فرق ہے؟ وہ بھی مصدر ہے یہ بھی مصدر، لیکن وہ ماقبل فعل کے معنی میں ہوتا ہے اور یہ ماقبل فعل کے معنی میں نہیں ہوتا، الگ الگ معنی ہوتا ہے. ہاں تو ماقبل والے فعل اور اس مصدر کا الگ الگ معنی ہوتا ہے، یہ جو مفعول لہو بنتا ہے اور یہ ماقبل فعل کی علت بیان کرتا ہے. اور میں نے یہ بھی بتایا کہ کبھی کبھار فعل مقدم ہوتا ہے اور مفعول لہو مؤخر، جیسے ضربتہ تادیبا، اور کبھی مفعول لہو مقدم ہوتا ہے اور فعل مؤخر ہوتا ہے، جیسے قعدت عن الحرب جبنا، میں نے جنگ میں شرکت نہیں کی، میں جنگ سے بیٹھ گیا. جبنا کس کی وجہ سے؟ بزدلی کی وجہ سے. تو یہاں بزدلی مقدم ہے اور جنگ سے بیٹھنا مؤخر ہے. اور میں نے بتایا اس کا ترجمہ کے لیے اور کی وجہ سے، یہ دو لفظوں کے ساتھ ترجمہ کیا جاتا ہے، موقع کے مطابق آپ دیکھ لیں گے جہاں مناسب ترجمہ بن، جو مناسب ترجمہ بنتا ہو. اس کے بعد آپ نے حال کے بارے میں پڑھا کہ حال جو ہے وہ فاعل کی حالت بیان کرتا ہے یا مفعول بھی کی حالت بیان کرتا ہے یا دونوں کی حالت بیان کرتا ہے، اور اس کا ترجمہ اس حال میں، یہ عموماً ہم کرتے ہیں، لیکن با محاورہ ترجمہ کرنا ہو تو اس کو جملے کے اندر ہی لے آیا کریں اور اس کے مطابق ترجمہ کریں. جا زید راکبن، کیا ترجمہ کریں گے؟ جا زید راکبن، زید سوار ہو کر آیا. اور ضربت زیدن مشدودن، ترجمہ کریں، میں نے باندھے ہوئے زید کی پٹائی کی. اور لقیت زیدن راکبینی، मैंने और जैद ने सवार होकर मुलाकात की। तरीका समझ में आ गया। उसके बाद तमीज के बारे में पढ़ा। तमीज जो है मैंने बतलाया, तमीज उसे कहते हैं जो किसी चीज से इबहाम को दूर करे। कभी तो ये क्या करती है, किसी मिकदार से इबहाम को दूर करती है। जैसे इशरूना किताबन, ये किताबन ने क्या किया, इशरूना से इबहाम को दूर किया। या इशरूना दिरहमन, मालूम हुआ इशरूना से क्या मुराद है, दिरहम। देखो दिरहमन ने इबहाम को दूर किया। और कभी ये निस्बत से इबहाम को दूर करती है तमीज, जैसे ताबा जैदन नफसन, ये जो ताबा की निस्बत थी जैद की तरफ, फाइल की तरफ, इसमें इबहाम था, नफसन ने आकर उस इबहाम को दूर कर दिया और बतलाया कि ये जो जैद अच्छा है, बाप होने के एतबार से नहीं या इलम के एतबार से नहीं, बल्कि अपनी जात के एतबार से अच्छा है। और उसके बाद इन्होंने बताया कि फेल मुतादी जो है वो एक सातवीं चीज को भी नसब देता है जिसे मफूल बिही कहते हैं, और ये अमल फेल लाजिम नहीं करता, फेल लाजिम के लिए मफूल बिही नहीं आता। और एक और बात मैंने जिक्र की थी कि फेल का जो फाइल की तरफ से ताल्लुक होता है उसके लिए क्या लफ्ज बोलते हैं, इसनाद का लफ्ज। फेल का फाइल की तरफ इसनाद, यूं कहते हैं कि ये फेल इसके साथ कायम है। और मफूल के लिए ताल्लुक का लफ्ज बोलते हैं, ये मफूल का फेल का इसके साथ ताल्लुक है भाई। चलिए बस भाई, हदफ अल मराम, अल्लाह आलम बिहकीकतिल कलाम।